अध्याय दसवां। जगमगाते मुकुट, चमचमाते आभूषण और मनोहर पोशाकें पहने बच्चे मंच पर कृष्ण लीला का अभिनय कर रहे थे। नाट्यकला के सूक्ष्मतम पक्षों में दक्ष उन्होंने अपने नृत्य, गीतों, अभिनय से उद्यान में बैठे लगभग 100 दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ऐसे नाटक समूचे वृंदावन में अनेक स्थान पर होते रहते तथा कभी कभी मैं और असीम उन्हें देखने जाते। आज हो रहे नाटक में कृष्ण और उनके ग्वाल बालकर अधिकारी का अभिनय करते हुए माखन की मटकियां उठाए राधा रानी एवं गोपियों का रास्ता रोके खड़े थे। असीम ने मेरे लिए अनुवाद किया। कृष्ण का अभिनय करते हुए छोटे से सुंदर बालक ने राधा रानी से कहा, ये रास्ता पार करने के लिए तुम्हें अपनी सुंदरता, मनोहरता और मधुर प्रेम का कर चुकाना होगा। वो कर है तुम्हारे मटकों में भरा माखन। राधा रानी की सखी ललिता का अभिनय करते सुंदर बालक ने कहा, हम तुम्हें कर क्यों दें? मेरी राधा रानी व्रज की राज राजेश्वरी है। तुम्हारे गायें जो प्रतिदिन सारी घास खा जाती हैं, उसके लिए तो तुम्हें कर देना चाहिए। प्राचीन कथाओं की मधुरता को नृत्य गीतों से बढ़ाते हुए तथा हंसी मजाक और आध्यात्मिक भावनाओं से भरे चुलबुले संवादों के माध्यम से अभिनेताओं ने हमारा मन हर लिया। प्रत्येक मुठभेड़ में राधा रानी के प्रेम ने विनोदी कृष्ण को जीत लिया। मैंने अपने भ्रमण के दौरान सीखा था कि योग का सार परम में तल्लीन रहना है। मैं ये देखकर अचंभित था कि एक नहीं अपितु विभिन्न प्रकार से ऐसा किया जा सकता था। भोर की पहली किरण ने बलुआ पत्थर से बने एक प्राचीन मंदिर के पीछे विशाल प्रांगण का स्पर्श किया। प्रांगण के चारों ओर ईंट की 10 फुटी ऊंची चार दीवारी पर फूल पत्तों से लदी लताएं चढ़ी थी, जिनके चारों ओर मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। पेड़ की शाखाओं में छिपे पक्षी सामूहिक गीत गाकर उगते सूरज का स्वागत करने लगे। एक अहाता एक आश्रम था जहां भक्त शांति से प्रार्थना करते थे। एक बार कृष्णदास बाबाजी ने मुझे बताया था कि प्रांगण के बीचों बीच श्रील रूप गोस्वामी नामक एक विख्यात संत की समाधि है। एक समय वे और उनके अग्रज श्रील सनातन एक राजा के प्रधानमंत्री के रूप में बंगाल पर शासन करते थे। ये अभित्याज्य सुंदर एवं विद्वान युवक अतुल ऐश्वर्य से युक्त महलों के स्वामी थे। यद्यपि वे अत्यंत परोपकारी और सभी को प्रिय थे, वे समाज को भगवत प्रेम की सर्वोच्च भेंट देने के लिए लालायित थे। इसी विश्वास के साथ वे अपना सब कुछ दान देकर वृंदावन चले आए और यहाँ वे वन के वृक्षों के नीचे सोते। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से इन भाइयों ने विशाल साहित्य की रचना की, जिससे विश्व को आध्यात्मिक प्रेम के आंतरिक रहस्यों का बोध कराया जा सके, और साथ ही वे इन शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन भी करते थे। लगभग 5 शताब्दियों से वे असंख्य अनुयायियों को प्रेरणा दे रहे हैं। मैं रूप और सनातन की भक्ति से इतना आकर्षित हो गया कि उनके विषय में जितना सुनता उतना कम था। श्रील रूप गोस्वामी की समाधि के सम्मुख मैं घुटने टेक कर मौन प्रार्थना करने लगा। उनकी समाधि पर बलुआ पत्थर का एक छोटा चौकोर कक्ष बना था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर एक शिखर था। विभिन्न पंथों के धार्मिक ग्रंथों से मैंने सीखा था कि किसी संत की समाधि पर उनकी उपस्थिति विशिष्ट रूप से प्रबल होती है, किंतु उस दिन जो घटने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अकस्मात मैंने उस समाधि से प्रवाहित होती एक अदृश्य शक्ति का अनुभव किया, जो अलौकिक किंतु वास्तविक थी। ऐसा लग रहा था मानो असीमित कृपा से भरी कोई शक्ति मेरा आलिंगन करके मेरे अस्तित्व को प्रेम से भर रही थी। मैंने एक ऐसे हल्केपन को अनुभव किया जो मेरे तन और मन से परे था। मेरे अंग कांपने लगे, त्वचा सनसनाने लगी तथा कृतज्ञता की लहरें मेरे हृदय को रोमांचित करने लगी। धूल भरी भूमि पर नीचे देखते हुए मैं ऐसे अंतरंग अनुभव के लिए स्वयं को अत्यंत तुच्छ और अयोग्य पा रहा था। क्या ये उस दिव्य प्रेम की एक अन्य झलक थी जिसके लिए मैं लालायित था तथा जो मुझे उस प्रेम हेतु और अधिक अभिलाषी बनने की प्रेरणा दे रही थी? मुझे ऐसा ही लगा। भगवान मुझे मेरे लक्ष्य की ओर एक और कदम उठाने के लिए हल्के से धकेल रहे थे। अचानक मुझे विश्वास हो गया कि भक्ति ही वो मार्ग है जिसके लिए मैं अपना जीवन समर्पित करूंगा और आने वाले समय में श्रीकृष्ण का नाम ही मुझे उनका प्रेम प्रदान करेगा। इस पथ को स्वीकारने की मेरी सारी झिझक अब दूर हो गई थी, किंतु मैं समझ गया कि मुझे गंभीरता से एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में इस पथ का पालन करना होगा। मुझे विश्वास था कि श्री कृष्ण मुझे उन गुरु के पास ले जाएंगे। भक्ति मार्ग, भगवान ने मेरा पथ अब स्पष्ट कर दिया था। अंततः मैंने इसे स्वीकार कर लिया। भारत में मेरा एक वर्ष बीत चुका था। मैं ये सबक सीखता जा रहा था कि प्रत्येक अच्छे वस्तु के साथ उतनी ही चुनौतियां भी आती हैं। कुछ महीनों पूर्व मैंने मथुरा में अप्रवासी कार्यालय में अपना वीज़ा बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। एजेंट ने मेरा आवेदन पत्र नई दिल्ली भेज दिया और मुझे आश्वासन दिया कि मेरे आवेदन पत्र की रसीद सरकारी उत्तर आने तक मेरे वीज़े का काम करेगी। शरद ऋतु शीत में परिवर्तित हो रही थी और उस उत्तर का कोई चिन्ह नहीं था। कम से कम मुझे ऐसा लगा। मुझे मालूम नहीं था, एक पत्र में आश्रम में आया था जहां एक व्यक्ति ने उसे खो दिया और मुझे बताया भी नहीं। पत्र में कहा गया था कि मुझे तुरंत मथुरा कार्यालय में हाजिरी देनी होगी। इन सबसे अनजान में मथुरा नहीं गया। समय बीतता रहा। परिणाम स्वरूप वो अधिकारी जिसके अधीन मेरा केस था, ये सोचकर क्रोधित हो उठा कि मैंने उसके निर्देश की अवहेलना की है। दूसरी ओर मैं अपनी ही दुनिया में आनंद ले रहा था, बेखबर कि कहीं कुछ असहज घट रहा था। एक दिन एक मंदिर का पुजारी हड़बड़ाते हुए गली में मेरे पास आया। उसका चेहरा गंभीर था। एक सरकारी अफसर तुम्हें ढूंढ रहा है, उसने कहा। उसे लग रहा है कि तुमने उसकी अवहेलना की है। क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने भौचक्के होकर कहा। मैंने ऐसा क्या किया था? सुबह वो तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था। वो पागल कुत्ते के समान चिल्ला रहा था और उसने धमकी दी कि मिलने पर वो तुम्हें कड़ा दंड देगा। पुजारी का चेहरा घृणा से विकृत हो गया और अपनी आवाज़ नीची कर वो बोलने लगा, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, वो क्रूर और भ्रष्ट है। हमें स्थानीय गुंडों से भी अधिक डर उससे लगता है, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बस संभल कर रहना। मैं जहां भी गया, लोगों ने मुझे बताया कि वो एजेंट मुझे वहां ढूंढने आया था। अनेक ब्रजवासी और साधु मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। उन दिनों श्रीपाद बाबा और असीम के साथ मैं कभी कभी दिल्ली की योगमाया नामक एक संभ्रांत महिला के वृंदावन स्थित घर आया। उनके घर में दो कमरे थे जहां वे रात्रि समय भक्तों को बुलाकर कीर्तन करवाती और स्वयं सबके लिए प्रसाद बनाती। एक रात मुझे वहां नई दिल्ली से आया इंजीनियर नाम का एक व्यक्ति मिला, जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था। उसकी उम्र 35-40 वर्ष की थी एवं काले सवरे बाल, कतरी हुई मूछें तथा लंबा कद था। योगमाया के घर पर आए अन्य व्यक्तियों के समान वो भी सरल हृदयी और श्रीकृष्ण का भक्त था। मेरा मामला सुनने के पश्चात उसने सभी को आश्वासन दिया कि अपनी जान पहचान द्वारा वो नई दिल्ली में मेरा वीज़ा बढ़वाने का प्रयत्न करेगा। घर पर आए सभी लोगों ने जोर दिया कि हम दोनों को तुरंत दिल्ली निकल जाना चाहिए। रात के अंधेरे में इंजीनियर और मैं वृंदावन की संकरी गलियों से छुपते छिपाते बस अड्डे तक पहुंचे। जैसे ही हम टिकट खरीदने के लिए पंक्ति में खड़े हो गए, एक गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी, गिरफ्तार कर लो इसे। बस अड्डे पर सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक हाथ ने मेरी गर्दन दबोची और मुझे ईंट के दीवार पर दे मारा। वो सरकारी एजेंट मेरे सामने खड़ा था। कहाँ भाग रहे हो तुम, वो चिल्लाया। तुमने मेरी परवाह नहीं की बच्चू, अब तुम्हारी खैर नहीं। उसकी आंखें क्रोध से धधक रही थी। इंजीनियर ने उसकी आस्तीन पकड़कर उसे हमारी बीच हुई गलतफहमी को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन एजेंट किसी की सुनने का आदी नहीं था। वो केवल मारपीट की भाषा जानता था। उसने इंजीनियर के चेहरे पर तड़ातड़ तमाचे मारे और उसे भी मेरे समान दीवार से चिपका दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, वो चिल्लाया। दोबारा मुंह खोला तो तुम्हें भी मार मार कर अंदर कर दूंगा। औरतें चिल्लाने लगी, आदमी सहम गए और बच्चे रोने लगे। डंडा लिए दो सिपाही किसी को बीच बचाव करने से रोकने के लिए उसके पास खड़े थे। इंजीनियर डर के मारे दीवार से सटा रहा और वो एजेंट मेरी गर्दन पकड़कर मुझे खींच कर ले गया। आतंकित स्थानीय लोग याचना करने लगे, ये साधु है, इसे मत मारो, मत मारो इस लड़के को। एजेंट मुझे अपने साथ खींचता हुआ लाया और मथुरा जाने की बस में धकेल दिया। बस के दरवाजे पर वो उन दो सिपाहियों की ओर मुड़ा, तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब ये मुजरिम मेरा है। उसने मुझे बस की अगली सीट पर पटक दिया और मेरे साथ बैठ गया। मैंने अब उसे अच्छी तरह से देखा। उसका डील डॉल पहलवान के समान था तथा बिखरे बाल एवं छोटी दाढ़ी थी। मेरे कंधे पकड़कर झकझकोरते हुए वो मेरे पास आकर चिल्लाया, मैं तुम्हें कोड़ों से पीटूंगा, भूखा मारूंगा और इतनी पिटाई करूंगा कि तुम रोओगे कि तुम पैदा ही क्यों हुए। उसके मुंह से थूक की बौछार हो रही थी। उसे अपने चेहरे से पोंछते हुए मैंने सोचा, मैं ऐसे व्यक्ति के हाथों में फंसा हूं जिसे दूसरों को सताने में आनंद मिलता है। ये व्यक्ति पागल है, क्या करूं मैं। मैंने आंखें बंद कर ली और धीरे से हरे कृष्ण मंत्र जपने लगा। खचाखच भरी बस झटके से चल पड़ी। हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि अचानक बस में पीछे कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। दो किसानों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। मेरे बंदीकर्ता ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इस मौके का आड़े हाथों लिया। सीट से उछलकर उसने बस चालक को मेरे ऊपर निगरानी रखने का निर्देश दिया। मानो मैं दौड़ती बस से कहीं भाग सकता था। चिल्लाते और सबको धकेलते हुए वो एजेंट बस के पीछे पहुंचा। वहां उसने निर्दयता से दोनों किसानों की धुलाई कर डाली। इस बीच में सोचने लगा, अगले कुछ क्षण मेरे बचने का एकमात्र अवसर हो सकते हैं। मैं मन ही मन बचने के रास्ते के लिए प्रार्थना करने लगा। मेरे मन में एक विचार कौंधा। मैं अपनी सीट से उछला और भागकर चालक के पास जाकर चिल्लाया, पानी पानी पानी। अर्थात मुझे लघु शंका निवारण के लिए जाना था। हाथ के संकेत के साथ उसने मुझे वापस अपनी सीट पर बैठने के आदेश दिया, किंतु मैं गया नहीं, अपितु मैं एक छोटे बच्चे के समान ऊपर नीचे कूदने लगा और पीड़ा से ऐसे चिल्लाने लगा मानो मेरा मूत्राशय फटने ही वाला था, पानी पानी। फिर से उसने मुझे बैठने के लिए कहा। उस समय मैंने देखा कि चालक नंगे पैर था। मेरे बचने का एकमात्र अवसर हाथ से छूटता जा रहा था। मैंने आगे जो किया उसे आपातकालीन परिस्थिति में मैं उठाया बचाव का एकमात्र मार्ग मानना चाहिए। मैं चालक की सीट के पास उकड़ू बैठ गया और बस के फर्श पर मूत्र विसर्जन करने लगा। ध्यान से निशाना साधते हुए जिससे उसके छींटे चालक के नंगे पैरों पर पड़े, मेरे गर्म मूत्र के छींटों का अपने पैर पर अनुभव कर उसकी आंखें अचंभे से फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। भौचक्के होकर उसने ब्रेक दबाई, दरवाजा खोला और चिल्लाया, बाहर जाकर करो इसे। मैं हवा की तरह उड़ा। हैरानी की बात थी, बस चल दी। शायद बस चालक मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। मैं खेत में जाकर एक झाड़ी में पीछे से नजारा देखने लगा। 50 गज आगे जाकर बस ची ची करती हुई रुकी और उल्टे वापस आने लगी। मैं कल्पना कर पा रहा था कि वो एजेंट मुझे छोड़ने के लिए चालक को ढूंढ रहा होगा। रात के अंधेरे में वो एजेंट बाहर कूदा और उत्तेजित होकर हाथ में टॉर्च लिए सड़क पर आगे पीछे ढूंढने लगा, किंतु उसके चारों ओर केवल निर्जन मार्ग ही था। हताश हो पैर पटकाता हुआ वो बस पर चढ़ा और वापस मथुरा चला गया। इसी बीच मैं चुपके से खेतों, जंगलों और पिछली गलियों से होता हुआ योग माया के घर पहुंचा। इंजीनियर पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने मेरे पकड़े जाने का वृत्तांत भक्तों का सुनाया था। वे रात भर मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना और जप करते रहे। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। जब मैं दरवाजे पर आया तो सभी ने उछल कर मेरा स्वागत किया। तुम कैसे बच निकले, उन्होंने एक स्वर में पूछा। श्री कृष्ण की कृपा से। अपनी करतूत बताने में मुझे लज्जा आ रही थी। बाद में बस में बैठे शेष यात्रियों ने मेरे भाग जाने के पश्चात की घटनाओं का वर्णन मुझे सुनाया। जब वो एजेंट आग बबूला हो रहा था, एक बूढ़ी विधवा ने उसका मजाक उड़ाया। तुम इतने बड़े ताकतवर आदमी होने की शेखी बधारते हो, किंतु उस पतले से छोटे साधु ने तुम्हें हरा दिया। बस में बैठे सभी लोग जोर से हंसने लगे। बुरी तरह से अपमानित उस एजेंट ने सार्वत्रिक घोषणा की कि वो मेरे द्वारा दिए धोखे का बदला लेकर रहेगा। उस रात से वो हर समय अपने शिकार की खोज में रहता था, मेरी खोज में। ब्रजवासी उसे गलत जानकारी दे देते। इसी बीच मैं वृंदावन की सारी चोर गलियों को जान लिया और प्रमुख सड़क पर पैर रखने की हिम्मत भी नहीं करता था। मैं एक भगौड़े का जीवन जी रहा था और कानून का एक सनकी अधिकारी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। एक दिन प्रातः 4:30 बजे राधारमण मंदिर में प्रार्थना करते हुए मैंने अपनी स्थिति श्रीकृष्ण के समक्ष रखी। यदि मैं अवैध वीजा के साथ भारत छोड़ने का प्रयत्न करता हूं तो मुझे कभी वापस लौटने नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर यदि मैं यहां रहता हूं तो ये कुछ ही समय की बात है, मैं पकड़ा जाऊंगा और सदा के लिए वृंदावन से निकाल दिया जाऊंगा। कृपया जो आपको अच्छा लगे सो करें। सबके धुंधलेपन में मैं मंदिर से निकला और एक संकरी गली में चलने लगा। अचानक एक भयानक गुर्राहट अंधेरे में गूंज उठी। डरकर मैं थम गया। तभी एक जानवर ने अपने पैने दांत मोटी दाहिनी टांगे में धसा दिए और अपने शक्तिशाली जबड़ों से जकड़कर मुझे भूमि पर गिरा दिया। फिर सब शांत हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, केवल अंधेरा था। वो जानवर अंधेरे में उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वो आया था। पीड़ा से दहकती टांग से अंधेरे में लड़खड़ाते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं कीचड़ से भरे एक नाले में गिर पड़ा। जैसे तैसे मैंने अपने शरीर को नाले से बाहर निकाला और लंगड़ाते हुए राधा वल्लभ मंदिर पहुंचा। वहां के प्रमुख पुजारी और उनके पुत्र राधेश लाल गोस्वामी ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मेरे स्नान का प्रबंध किया। उनके स्नेहिल संग में मेरी टांग की पीड़ा गायब हो गई। उसी सुबह बाद जब मैं घनश्याम बाबा और दो अन्य साधुओं के साथ उनके मंदिर में बैठा था तो घनश्याम बाबा ने मेरा घाव देखा। चौंकते हुए उन प्रेमी वृद्ध व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़कर ऊंचे स्वर में पूछा, कृष्णदास क्या हुआ तुम्हें? मैंने सब बता दिया। उन्होंने दुख से सिर हिलाया। एक वृद्ध साधु ने चौंकते हुए कहा, जो भी कुत्ता ऐसे काटता है वो पागल होता है और उससे रेबीज होता है, तुम्हें तुरंत इसका उपचार करवाना चाहिए। हताश हो मैंने उत्तर दिया, अच्छा होगा कि कहीं बाहर जाने की अपेक्षा मैं वृंदावन में ही मर जाऊं। वे सभी व्यथित हो उठे और मेरी ओर ऐसे देखने लगे जैसे भिखारी भोजन के लिए याचना करता है। रेबीज तुम्हें पागल बना देगी, तुम्हें उचित उपचार करवाना ही होगा। वृंदावन का निःशुल्क दवाखाना मुख्य मार्ग पर लकड़ी की बनी एक कुटिया था। अपने पीछे लगे एजेंट के कारण मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, किंतु फिर भी मैंने यह जोखिम उठाया। 20-30 गरीब लोग पंक्ति में खड़े थे, मक्खी मच्छरों का झुंड भिनभिनाते हुए काट रहा था। डॉक्टर के पास दवाइयों की भारी कमी थी। मैंने ध्यान से देखा कि कैसे उसने एक रोगी को इंजेक्शन दिया, फिर सुई को स्पिरिट में हिलाया और ऐसे एक के बाद रोगियों को लिए उसी सुई का उपयोग किया। फिर मेरी बारी आई। डॉक्टर ने मेरे घाव का निरीक्षण किया और निराशा से भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें निश्चित ही रेबीज हुआ है, क्या तुम उस जानवर को पहचान सकते हो जिसने तुम्हें काटा? वो अंधेरे में भाग गया, मैंने उत्तर दिया। मैं नहीं जानता वो कौन था। उसने मुझे नंगी लकड़ी की मेज पर पीठ के बल लिटा दिया। फिर लोहे के बक्से से ढूंढते हुए उसने एक बड़ी सुई निकाली, एक बदरंगी और मुड़ी हुई थी। मेरी आंखों के सामने उसने सुई को एक रेती से घिसा, फिर धीरे से उसने सिरिंज में दवाई भरी। क्षमा करना, किंतु मुझे तुम्हारे पेट में इंजेक्शन देना होगा, इससे बहुत पीड़ा होगी। डॉक्टर ने वो कुंठित सुई मेरे पेट में दबाई, किंतु वो घुसी नहीं। वो बार बार प्रयत्न करते हुए जोर से प्रहार करता रहा और मैं नीचे छटपटाता रहा। दर्जनों अधीर रोगी पीछे कतार में खड़े थे, बुरी तरह से परेशान दिखते हुए। डॉक्टर चिल्लाया, यदि मैं ये दवाई तुम्हारे अंदर नहीं डालूंगा तो तुम मर जाओगे। आपातकाल में कभी कभी हमें अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, ऐसा कहकर उसने जोर से वो सुई मेरे पेट में भोंक दी और मेरा पूरा शरीर मेच से उछल पड़ा। दर्द असहनीय था। अंततः सुई अंदर घुस ही गई। मुझे लगा मानो वो मुझे दो हिस्सों में चीर रही थी। डॉक्टर ने धीरे से दवाई मेरी मांसपेशियों से मेरे रक्त में प्रवाहित कर दी। तीव्र वेदना के साथ मेरा पेट सूज गया। मैं वहां से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था और निश्चय किया कि दोबारा वहां कदम नहीं रखूंगा। जब मैं लंगड़ा कर जा रहा था तो डॉक्टर ने कहा, अगले 13 दिनों तक तुम्हें प्रतिदिन यहां आकर यह इंजेक्शन लेना होगा। मैं जानता था कि मैं ऐसी एक और प्रताड़ना झेल नहीं पाऊंगा, मेरे लिए वापस आना संभव नहीं है। मैंने कहा, यदि तुम नहीं आओगे तो तुम असाध्य मिर्गी से पागल होकर मर जाओगे। मैंने अपनी जटिल परिस्थिति उसे समझाई। यदि मैं प्रतिदिन इस मुख्य मार्ग पर आऊंगा तो निश्चित ही पकड़कर जेल में डाल दिया जाऊंगा। बातें करते करते उसका स्नेह जाग उठा और उसने मुझे सांत्वना दी, मैं एक सरकारी डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें सरकारी मोहर लगा एक पत्र दूंगा, तुम उसे लेकर दिल्ली चले जाओ और उसे देखकर वे निश्चित ही तुम्हें वैध वीजा प्रदान करेंगे। अगले दिन मेरे पेट पर हरे और नीले रंग की सूजन आ गई, लेकिन इंजेक्शनों से छूट मिलने की वाली नहीं थी। मैं जानता था कुछ भी हो मुझे अगले 13 दिनों तक उस दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। बेचारा डॉक्टर अपने सीमित साधनों के साथ यथासंभव सहायता करने का प्रयास कर रहा था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि मेरे वापस लौटने तक वो वही अच्छी सुई लाकर रखेगा। उसके निर्देशानुसार मैं तीसरे दर्जे की रेलगाड़ी पकड़ नई दिल्ली चला गया। जब मैं गृहमंत्री के कार्यालय में पहुंचा, मुझे उच्च पदाधिकारी के पास भेजा गया क्योंकि मेरा मामला थोड़ा विशेष था। अधिकारी ने गंभीरता से डॉक्टर का पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि मुझे रेबीज है और पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर ने अत्यावश्यक निवेदन किया था कि मुझे वैध वीजा प्रदान किया जाए जिससे वो मेरी चिकित्सा जारी रख सके। उसे पढ़ने के पश्चात अप्रवासी अधिकारी ने कठोरता से मेरी आंखों में देखा। फिर वो कहने लगा, यदि मुझे पता चलेगा कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण हूं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। उसने मेरे कागजातों को मंगवाया और ध्यानपूर्वक मेरी स्थिति को व्यवस्थित कर दिया। अब तुम पूरी तरह से वैध हो, अब समस्या की कोई बात नहीं है। इन शब्दों के साथ उसने मेरे पासपोर्ट पर नए वीजे की मोहर लगा दी। वृंदावन वापस लौटते हुए मुझे लगा कि मैंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक शुद्धिकरण की एक और की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया था। मुझे पुनः उस सरकारी एजेंट ने तंग नहीं किया, क्योंकि उसकी स्वयं की जांच पड़ताल हो रही थी और शीघ्र ही उसे अपने पद के दुरुपयोग के लिए बर्खास्त कर दिया गया। मैं अपने प्रिय वृंदावन में रहने के लिए अब स्वतंत्र था और मुझे ऐसी तीव्र अनुभूति हो रही थी कि शीघ्र ही यहाँ पर मेरे लिए कुछ अद्भुत घटने वाला है। नवंबर के अंतिम दिनों की एक सर्द रात थी। मैं यमुना के तट पर एक कदंब वृक्ष के नीचे अकेला बैठा ध्यानपूर्वक नदी के धीमे प्रवाह के गीत को सुन रहा था। चांद की किरणें नदी की लहरों पर चमचमा रही थी और रात के पंछी वातावरण को सुखद संगीत से भर रहे थे। मेरा मन एक प्रोजेक्टर बन गया और नदी मानो सिनेमा का पर्दा, जिस पर मैं अपने जीवन की घटनाओं का अवलोकन करने लगा। उस पर्दे पर मैंने अपने बचपन के सुख और दुख देखे तथा अपनी किशोरावस्था की बेतुकी मनमानियां। मैंने गैरी और स्वयं को देखा, जो युवावस्था के जोश में अपने देश को छोड़कर जीवन का सार ढूंढने निकले थे। हम यूरोप में घूमे, पर्यटक स्थल देखे, मित्र बनाए और हर संभव अनुभव को प्राप्त किया। इन सब प्रकरणों को जिस धागे ने एक साथ पिरोया हुआ था, वो भगवान को पाने की एक ललक थी जो आगे चलकर उन्माद बन गई। कहाँ से आई थी वो ललक, मुझे मालूम नहीं। इस खोज में मैंने विविध धर्मों और दर्शनों का अध्ययन किया और बचपन से सिनेगॉग में तथा बाद में गिरजाघरों में, मस्जिदों में और मंदिरों में प्रार्थनाएं की थी। नदी के प्रवाह को निहारते हुए मेरा मन उड़कर ऑयल ऑफ क्रीट में होते हुए उस सूर्यास्त पर पहुंच गया जब मैंने भारत की यात्रा पर निकलने का संकल्प लिया था। मध्य पूर्वी देशों को पार करते हुए मैंने जीवन परिवर्तन करने वाली अनेक शिक्षाएं पाई। जब मैं पवित्र कुरान पढ़ रहा था तो रोग और खतरे निरंतर मेरे सिर पर मंडरा रहे थे। जब मैंने नदी में और गहराई से देखा तो मेरे मन की आंखों को हिमालय की विहंगम सुंदरता दिखाई दी। मैंने महान ऋषियों, योगियों, तपस्वियों, सिद्धों और लामाओं को देखा, जिनसे मैंने आतुरता से ज्ञान सीखा था। वे सभी मुझ पर अत्यंत कृपालु थे और मैं हृदय से एक एक का धन्यवाद करने लगा। फिर मैंने नेपाल के धान के खेत में गैरी के साथ उस चमत्कारिक पुनर्मिलन को देखा। मैं सोचने लगा कि अब वो कहाँ होगा और हम फिर से क्यों अलग हो गए। उस नदी के तट पर मैंने उन सभी प्रार्थनाओं को सुना जो मैंने अपनी कठिन यात्रा में अपने आध्यात्मिक मार्ग के अनावरण के लिए की थी। मुझे स्मरण हो आया कैसे भगवान राम ने रामसेवक स्वामी के स्वप्न में आकर मेरे विषय में कहा था, ये युवक कृष्ण भक्त है और वृंदावन इसकी आराधना की भूमि होगी। उस समय मैंने उन शब्दों की उपेक्षा की थी, किंतु अब वृंदावन में 5 महीने रहने के पश्चात मेरे भीतर एक संपूर्ण समर्पण की भावना जग गई थी और मैंने अंततः श्री कृष्ण भक्ति को अपने आध्यात्मिक मार्ग के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर भी मैं अपने अंतकरण में कुछ खालीपन का अनुभव कर रहा था। मैं जानता था कि मुझे एक गुरु स्वीकार कर पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित होना होगा। परंपरा और शास्त्रों की वाणी दोनों ही इस आवश्यकता पर बल देते हैं। अनादिकाल से प्रबुद्ध महात्माओं ने गुरु के सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। फिर यमुना के गहरे प्रवाह को देखते हुए मैंने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। अब देर रात हो चुकी थी। ये विचार करते करते मैं नदी के तट पर सोने के लिए लेट गया, लेकिन एक विचित्र दुस्वप्न ने मुझे व्यतीत कर दिया। मैंने स्वयं को अमेरिका के एक आरामदायक घर में लोगों से घिरे पाया जो छिछोरे विषयों पर बातें कर रहे थे। पीछे एक टीवी चल रहा था। मैं झटके से उठ गया। मैंने वृंदावन को क्यों छोड़ा, मैं चिल्लाया। भ्रम में मैं रोते हुए नदी के किनारे तट पर लौटने लगा। मैंने वृंदावन क्यों छोड़ा, मैंने वृंदावन क्यों छोड़ा। धीरे धीरे मैं निकट बहती यमुना और कदम्ब के वृक्ष को पहचानने लगा। अरे, मैं तो वृंदावन में ही हूँ। मैं खुशी से फूला नहीं समाया। मैं अभी वृंदावन में हूँ, मैंने जोर से कहा। मैं हाथ फैलाकर नीचे ठंडी भूमि पर लेट गया। मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने स्वयं से कहा। सूझबूझ पाकर मैं विचार करने लगा, वृंदावन का ये ठंडा मिट्टी का नदी तट मुझे अपने देश में बनी राजसी हवेलियों से कई गुणा अधिक प्रिय है। प्रातः जब मैं एक संकरी गली से जा रहा था तो रास्ते में अलसाती हुई एक गाय बैठी थी। उसके पास से गुजरते जब मैंने ऊपर देखा तो भगवा कपड़े पहने एक पश्चिमी साधु तेजी से मेरे ओर आ रहा था। हाथ हिलाते हुए उन्होंने मुझे पुकारा, रिचर्ड रिचर्ड। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं उन्हें जानता था। जब वे निकट आए तो मैंने देखा कि वही भक्त थे जिनसे मैं बम्बई में 9 महीने पूर्व हुए हरे कृष्ण महोत्सव में मिला था। मैंने वृंदावन में कभी भी श्रील प्रभुपाद के इन पश्चिमी शिष्यों को नहीं देखा था। मैं उल्लसित हो उठा। श्रील प्रभुपाद कल आ रहे हैं, उन्होंने कहा। सूर्योदय होने ही वाला था। चहचहाते पक्षी आकाश में उड़ान भर रहे थे। वो सुस्ताती गाय रंभाती हुई उठी और अपने खुरों से सड़क पर आवाज करती हुई चल दी। उनकी बातें सुनकर मेरे भीतर आवेश की एक अद्भुत लहर दौड़ गई। क्या तुम जानते हो कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन के निवासी हैं? वे संपूर्ण जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर वापस यहाँ लौट रहे हैं। मेरी पीठ थपथपाते हुए वे मुस्कुराए, प्रभुपाद तुम्हें यहाँ देखकर अति प्रसन्न होंगे। हम सब ये सोच ही रहे थे कि तुम कहाँ हो सकते हो, कृपया मिलने अवश्य आना। यहाँ पे 10वां अध्याय समाप्त होता है।